ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल से बांग्लादेश बिजली निर्यात के लिए हुआ त्रिपक्षीय समझौता। नेपाल और भारत के अंतर्देशीय प्रसारण लाइन के जरिए 40 मेगावाट बिजली होगी बांग्लादेश निर्यात। नेपाल और भारत के बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण संबंधी द्विपक्षीय समझौता हुआ। पीपी राजमार्ग दशहरे से पहले पूरी तरह नहीं हो पाएगा सुचारू। विकल्प के रूप में अन्य रूटों को सुचारू करने का काम हो रहा है, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय का कथन। और ताइवान के एक अस्पताल में आग लगने से कम 9 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। नेपाल ने बांग्लादेश में 40 मेगावाट बिजली निर्यात संबंधी त्रिपक्षीय समझौता किया है। आज काठमांडू में एक समारोह में नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिंग, बांग्लादेश के बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद रिजाउल करीम और भारत के नोडल एजेंसी एनवीवीएन के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी रेणु नारांग ने समझौते पर हस्ताक्षर किये। समारोह में ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का, बांग्लादेश के वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जल स्रोत मंत्री सैयदा रिजवाना हसन सहित नेपाल बांग्लादेश के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति थी। बता दें कि प्राधिकरण भारतीय एजेंसी एनवीवीएन को बिजली उपलब्ध कराएगा और वो कंपनी भारतीय संरचनाओं के जरिए बिजली को बांग्लादेश पहुंचाएगी। बता दें कि बांग्लादेश सन 2040 तक नेपाल से 9000 मेगावाट बिजली खरीदने की घोषणा इससे पहले ही कर चुका है। इसी तरह नेपाल और भारत के बीच भी 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली भारत में निर्यात संबंधी दीर्घकालीन समझौता हो चुका है। नेपाल और भारत के बीच दो महत्वपूर्ण पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण संबंधी द्विपक्षीय समझौता हुआ है। आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में नेपाल ऑयल निगम के कार्यकारी निदेशक डॉ चंडिका प्रसाद भट्ट और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक सेंथल कुमार ने समझौते पर हस्ताक्षर किये। समझौते के मुताबिक भारत की सिलीगुड़ी से नेपाल के झापा स्थित चार आली तक 50 किलोमीटर लंबी पेट्रोलियम पाइपलाइन का निर्माण होगा। साथ ही चार आली में 18,900 किलोमीटर क्षमता वाले स्मार्ट ग्रीनफील्ड टर्मिनल का निर्माण होगा। इसी तरह अमलेखगंज से चितवन के लोथर तक 62 किलोमीटर पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना का भारत सरकार के अनुदान में निर्माण होगा। साथ ही लोथर में 91,900 किलोलीटर क्षमता वाले स्मार्ट ग्रीनफील्ड टर्मिनल का भारत सरकार के तकनीकी सहयोग में नेपाल ऑयल निगम निर्माण करेगा। ये जानकारी निगम ने दी। निगम के मुताबिक उन परियोजनाओं की कुल लागत 15 अरब रुपए होगी। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय ने हालिया भीषण बारिश के कारण 34 राजमार्गों में से 805 स्थानों में आए भूस्खलन में से 774 स्थानों के मलबे हटा दिए जाने की बात बताई है। मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर 29 राजमार्गों में विभागीय और भाड़े के यंत्र, उपकरण और जनशक्ति का उपयोग कर यातायात सुचारू किए होने की जानकारी साझा की। साथ ही यह भी बताया कि 5 मुख्य राजमार्गों के 39 स्थानों में मलबे हटाने का प्रयास जारी है। क्षतिग्रस्त सभी संरचनाओं को स्थायी रूप में पुनः स्थापित करने के लिए अनुमानित 20 से 25 अरब रूपये तक लगेंगे। ये बात मंत्रालय के सचिव केशव कुमार शर्मा ने बताई। मंत्रालय ने बताया है कि बीपी राजमार्ग के चौकी डांडा से कालढोंगा खंड में सड़क ही बह गई है, इसलिए दशहरे से पहले उसे पूरी तरह सुचारू नहीं किया जा सकता। उसके विकल्प के रूप में अन्य रूटों को सुचारू करने का काम हो रहा है। सचिव शर्मा ने बताया कि बाढ़ के कारण बीच रास्ते में फंसे हुए वाहनों को निकालने के लिए नदी किनारे ही अस्थायी सड़क निर्माण के काम हो रहे हैं। साथ ही ये बताते हुए कि दशहरे से पहले ही घाटी से बाहर जाने वाले अन्य राजमार्ग सुचारू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण 8 स्थानों में पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं और उनमें से जहां जहां संभव हो पाएगा वहां वहां बेली ब्रिज रखने की तैयारी हो रही है। मध्य पहाड़ी राजमार्ग अंतर्गत खुरकोट घुरमी खंड में आज से सिंगल लेन सुचारू हुआ है। कुछ दिन पहले आए बाढ़ व भूस्खलन के कारण राजमार्ग के करीब 100 स्थानों में रास्ता अवरुद्ध होने के बाद 5 दिनों से आवाजाही ठप है। पिछले 5 दिनों के निरंतर प्रयास के बाद आज दोपहर से सड़क को एकतरफा संचालित किया जा सका है। ये जानकारी सिंधुली गोलंजोर गांवपालिका के उपाध्यक्ष ज्वाला प्रसाद न्योपाने ने दी। हालांकि सूखा भूस्खलन आ सकने को लेकर आगाह करते हुए रात्रिकालीन यात्रा को जोखिम भरा बताते हुए सतर्कता अपनाने का आग्रह किया गया है। देशभर बाढ़, भूस्खलन और डूबान लगात प्राकृतिक आपदा में फंसे हुए 17,120 लोगों का सकुशल उद्धार किया गया है। खोज उद्धार के काम में तैनात नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी और स्वयंसेवकों की मदद से आज सुबह तक 17,000 से अधिक लोगों का उद्धार किया गया। ये जानकारी गृह मंत्रालय के सचिव ऋषिराम तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि हादसों में अब तक लापता 22 लोगों की खोज की जा रही है। घायल 169 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रभावित जिलों से नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से भी बीमारों, घायलों, बच्चों और ज्येष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देकर उद्धार किया गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटीसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसीको डे प्याक लिन *14*15 ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। गृहमंत्री रमेश लिखक ने बाढ़ प्रभावित जिलों के प्रमुख जिला अधिकारियों को उद्धार, राहत वितरण और घायलों के इलाज पर विशेष ध्यान देने का निर्देश किया है। गृहमंत्री लेखक ने बताया कि राजमार्गों को सुचारू करने के लिए सहजीकरण, यात्रियों को सहज और सुरक्षित यात्रा की सुविधा देने लगायत विषयों में यातायात व्यवसायियों के साथ विचार विमर्श हुआ है। इसी तरह काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर, धादिंग, सिंधुली लगायत जिलों में विपद में मरने वालों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर राहत रकम उपलब्ध कराने के साथ ही घर ढहने वाले परिवार को राहत रकम वितरण शुरू किया गया है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने कहा कि आपदा में घायल हुए लोगों को इलाज से वंचित नहीं होना पड़ेगा। आज राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटर में घायलों की अवस्था के बारे में संज्ञान लेते हुए मंत्री पौडेल ने कहा कि इलाज करा रहे घायलों की हर तरह की जटिल अवस्था का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। इस साल का दशहरा आज से शुरू हुआ है। इस अवसर पर वसंतपुर में रहे दशहरा घर में वैदिक विधिपूर्वक देवी दुर्गा का आवाहन करने के साथ ही जयंती रखकर आज से पूजा शुरू हुई है। आज देशभर हिन्दू धर्मावलंबियों के घरों और विभिन्न स्थानों में दुर्गा की मूर्ति पूजा स्थलों में जयंती सहित कलश स्थापित कर माता शैलपुत्री की पूजा आराधना की गई। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में वैदिक विधिपूर्वक पूजा करके जयंती रखकर घटस्थापन किया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि सरकार ने बाढ़ व भूस्खलन के पीड़ितों को तत्काल के लिए राहत और दीर्घकालीन पुनर्स्थापना के काम कर रही है। सामाजिक संजाल फेसबुक के जरिए नेपालियों के बड़े पर्व दशहरा अंतर्गत घर स्थापना की शुभकामना देते हुए प्रधानमंत्री ओली ने भारी बारिश के कारण आए बाढ़ व भूस्खलन से अकल्पनीय रूप में जनधन की क्षति होने से इस साल का दशहरा भी उत्साहजनक न होने की बात बताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दशहरा पर्व के अवसर पर आज से विदा होने के बावजूद बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट पर सुनवाई होगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट पर सुनवाई के लिए अदालत खुली रहेगी। ये जानकारी सर्वोच्च प्रशासन ने सूचना के जरिए साझा की है। पशुपतिनाथ के स्वामित्व में रही गौशाला स्थित धर्मशाला 21 सालों के बाद वापस मिली है। काठमांडू जिला अदालत द्वारा विक्रम संवत 2060 में श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी, वर्तमान पशुपति क्षेत्र विकास कोष और मारवाड़ी सेवा समिति के बीच हुए पशुपति गौशाला धर्मशाला संचालन संबंधी समझौते की खारिजी सदर किए जाने के बाद धर्मशाला पशुपतिनाथ के माथत आ गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तूफान से प्रभावित दक्षिणी ताइवान में आज सुबह एक अस्पताल में आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। ये आग पिंगटुंग काउंटी में लगी। ये क्षेत्र क्रैथॉन तूफान से बुरी तरह से प्रभावित है। तूफान के कारण यहां भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिली। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कुछ इलाके पूरी तरह से ठप हो गए। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दर्जनों मरीजों को अस्पताल से बाहर निकालकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। मरीजों को अस्पताल से निकालने और आग बुझाने में दमकल कर्मियों की सहायता के लिए पास के बेस से सैनिकों को तैनात किया गया था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.5 5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल से बांग्लादेश बिजली निर्यात के लिए हुआ त्रिपक्षीय समझौता। नेपाल और भारत के अंतर्देशीय प्रसारण लाइन के जरिए 40 मेगावाट बिजली होगी बांग्लादेश निर्यात। नेपाल और भारत के बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण संबंधी द्विपक्षीय समझौता हुआ। बीपी राजमार्ग दशहरे से पहले पूरी तरह नहीं हो पाएगा सुचारू, विकल्प के रूप में अन्य रूटों को सुचारू करने का काम हो रहा है, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय का कथन। और ताइवान के एक अस्पताल में आग लगने से कम 9 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।